नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। लोकसभा में इस समय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने वर्ष 1875 में लिखा था। चर्चा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के मंत्र ने समूचे देश को शक्ति और प्रेरणा दी तथा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जावान बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वंदे मातरम का स्मरण इस सदन के सभी सदस्यों और देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है।
वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था, और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति और दिशा दी।
यह वंदे मातरम भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। इस वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को काफी ताकत दिया था। वंदे मातरम वह गीत है अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण सदियों से सोया हुआ यह हमारा भारत देश जाग उठा था। वह गीत आधी शताब्दी तक स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरक बना रहा।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने भाषण में बहस को राजनीतिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम के पीछे की भावना सांप्रदायिक राजनीति को खारिज करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कठिन समय में ऊर्जा और आशा का संचार किया। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वंदे मातरम पर चर्चा शुरू करने के समय सदन में उपस्थित नहीं होने की आलोचना की। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि हवाई यात्रा की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उड़ान ड्यूटी समय सीमा FDTL दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन पर उन्होंने राज्यसभा को बताया कि सरकार कई उड़ानों के रद्द होने की स्थिति की जांच कर रही है, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्री नायडू ने कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। श्री नायडू ने बताया कि सरकार ने कुछ उड़ानों के रद्द होने और क्षमता की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए पूरे देश में हवाई किराए की सीमा तय कर दी है। सरकार ने दूरी के आधार पर 4 मूल्य निर्धारण स्लैब बनाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नियमित सीजन में हवाई किराए की सीमा पर लगातार नजर रख रही है और किसी विशेष सीजन में किराए में वृद्धि होने पर भी कड़ी कार्रवाई की है। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि पहली से 7 दिसंबर के बीच 5,86,700 से ज्यादा PNR रद्द किए गए और उनका किराया वापस किया गया। इससे 569 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लौटाई गई। मंत्रालय ने बताया कि कुल 9,000 बैगों में से 4,500 बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए गए हैं, जबकि शेष बैग अगले 36 घंटों में पहुंचा दिए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि वो देश में अनधिकृत डिजिटल लोन ऐप्स के संचालन पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित नियामकों तथा हितधारकों के साथ लगातार बातचीत कर रही है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष 1 जुलाई से सार्वजनिक जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर डिजिटल लैंडिंग ऐप्स DLA की एक डायरेक्टरी शुरू की है। सरकार ने आज ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए एक अभिरुचि पत्र सौंपा है। नई दिल्ली में 3री ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर के साथ विश्वविद्यालय को यह पत्र सौंपा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में आज 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें नक्सलियों की केंद्रीय समिति का सदस्य और एक सरगना भी शामिल है। ये नक्सली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सक्रिय थे। समर्पण के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार भी सौंपे गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।